कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले। सुनहरा इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। फिर से एक बार आप सबका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ, और विशेष करके हमारे उन नए श्रोता भाई बहनों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों न्यायियों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर गिदोन पर साक्षात प्रकट हुआ, परंतु वह शंकालु था। उसने विश्वास करने के लिए परमेश्वर के समक्ष दो शर्तें रखी थी। पहला यह था कि चारों ओर सूखा रहे और उसके ऊन पर ओस गिरे, और ऐसा ही हुआ। और दूसरा यह कि चारों ओर ओस गिरे और उसका ऊन सूखा रहे। परमेश्वर ने उसका विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इसके पूर्व हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप सचमुच में हमसे प्रेम करते हैं। हम जैसे कमजोर और तुच्छ लोगों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार आपने गिदोन को किया। आज जब हम उसके जीवन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की सहायता करें, ताकि हम गिदोन के जीवन से इस बात को सीख सकें कि आप कमजोर लोगों से प्रेम करते हैं और अपनी महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे हर एक भाई बहन, विशेष करके जो बीमार हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, निराश हैं, जो चिंतित हैं, ऐसे लोगों पर अपने अनुग्रह करें, ताकि वे इस बात को जान सके कि आप गिदोन को चुन सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप हमारे श्रोता भाई बहनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी महिमा उनके जीवन से लें। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, अब हम देखते हैं कि गिदोन अपनी रणनीति तैयार करता है। परमेश्वर उसे वैरियों के शिविर के निकट ले जाता है कि वह उनका वार्तालाप सुने, क्योंकि उन पर गिदोन का भय छाया हुआ था। कारण यह था कि गिदोन का साहस बढ़े। गिदोन के पास 300 योद्धा थे, परंतु तलवार एक भी नहीं थी। अतः उसने प्रत्येक योद्धा के हाथ में एक घड़ा और घड़े में मशाल और तुरही दी कि निश्चित समय पर तुरही फूके और घड़ा फोड़ दे, जिससे कि वैरी समझे कि वे असंख्य योद्धा हैं। मेरे मित्रों, अचानक ही रात के अंधकार में जब वैरी सो रहे थे, तो उन्होंने तुरहियां फूंकी और घड़े फोड़ दिए। तो उस दृश्य को देख नींद से जागे वैरी घबरा गए तथा आपस में ही मार काट करते हुए पहाड़ों में भाग गए। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की और वे पुनः शांति में वास करने लगे। अब आगे देखिए कि क्या होता है। गिदोन की अगुवाई में 40 वर्ष तक शांति। न्यायों की पुस्तक अध्याय 8 में गिदोन के इतिहास का क्रम चल रहा है। इसमें मिद्यानियों पर ईश्वरीय विजय के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इसराइल अब स्वतंत्र है और समृद्धि में वास कर रहा है। उन्होंने ओरेब और जेब मिद्यानी हाकिमों को घात किया और लंबे समय के बाद आशीषित हुए। वे गिदोन के उपकारों के लिए आभार व्यक्त करके उससे आग्रह करने लगे कि वह उनका शासक बन जाए। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, तब इसराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करें, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। प्रिय मित्रों, धर्मशास्त्र में यह पहला उल्लेख है कि इसराइल अपने लिए एक मानवीय शासक की इच्छा व्यक्त करता है। परमेश्वर ने तो पहले ही उनसे कह दिया था कि वह नहीं चाहता कि उन पर सांसारिक राजा राज्य करे। अब क्योंकि गिदोन ने उन्हें बैरियों से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए वे चाहते थे कि वह उनका राजा हो। यहाँ पर स्पष्ट है कि वह पहला व्यक्ति था जिसे वह उच्च स्थान दिया गया, परंतु उसने इनकार कर दिया। आगे चलकर हम देखेंगे कि इसराइल फिर से राजा की मांग करता है, और सच तो यह है कि वे बलपूर्वक राजा मांग रहे थे और उन्हें राजा मिल भी गया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि वह उनके लिए एक राजा का अभिषेक करे। शमूएल अंतिम न्यायी और प्रथम भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया था कि राजा मांगने के द्वारा वे शमूएल को नहीं परमेश्वर को ही अस्वीकार कर रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि वह स्वयं ही उनका बागडोर संभाले। इसराइल की सरकार धर्मतंत्र की सरकार थी, और इस घटना में परमेश्वर ने गिदोन का सामर्थी उपयोग किया था, परंतु इसराइल गिदोन को राजा बनाना चाहती थी। वे गिदोन को ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी राजा बनाना चाहते थे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वे अन्य जातियों के समान राजा चाहते थे। आइए हम देखें गिदोन के विशेष उत्तर। न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करे। मेरे प्रियो, गिदोन ने सबक सीख लिया था और इसमें कोई भी दो राय नहीं। यह युवक दाखरस के कुंड में गेहूं साफ कर रहा था और वह जानता था कि वह कायर और डरपोक है। वह यह भी जानता था कि परमेश्वर ने ही उसे विजयी बनाया था। वह जानता था कि उसमें युद्ध का सामर्थ्य नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे अपने उद्देश्य के निमित्त इस योग्य बनाया था। मेरे प्रियो, गिदोन निस्संदेह एक असाधारण पुरुष था। उसका नाम इब्रानियों अध्याय 11 में विश्वास के नायकों की सूची में आया है, वरन वह सूची में दाऊद से पहले आता है। और सच तो यह है कि वह सूची में पहला है। देखिए अध्याय 11 के पद 32 से 34 में वह सूची देता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमसोन का और इप्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। लेखक कहता है कि समय अनुमति नहीं देता कि इन विश्वासियों के विषय में चर्चा करें, जिसमें सबसे पहला नाम गिदोन का है। परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया था कि एक असाधारण कार्य करे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर किसी भी स्त्री या पुरुष को काम में ले सकता है, तो उसे परमेश्वर की शर्तों के अनुसार काम करना होगा और वह संसार की निर्बल वस्तुओं को काम में लेता है। मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि इन न्यायियों में बड़ी भारी दुर्बलताएं थी, परंतु परमेश्वर ने उन्हें काम में लिया। गिदोन की दुर्बलता थी कि वह एक कायर अर्थात डरपोक मनुष्य था। मैंने कभी कभी अपनी सेवा में इस मनुष्य की निकटता का बोध किया है। जब मुझे एक बार बड़ी सभा को संबोधन करना था अर्थात प्रभु के वचन को बांटना था, तब मैंने अपने आप को इसकी श्रेणी में रखा था। मैं अपनी संपूर्ण दुर्बलता में वहां गया था। मैं अपनी ईश्वरीय बुलाहट को समझ पाया था, क्योंकि मैं गिदोन के समान दुर्बल और कायर था। मित्रों, मैं तो केवल इसी बात से प्रसन्न था कि परमेश्वर ने मेरे लिए वही किया जो उसने गिदोन के लिए किया था। परमेश्वर निश्चय ही मेरे साथ था और मैं परमेश्वर का अत्यधिक आभारी हूँ। मैंने यही अनुभव किया है कि जब मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूँ तो ठोकर खाकर गिर जाता हूँ, परंतु जब मैं परमेश्वर को उसकी इच्छा पूरी करने देता हूँ तब उसका कार्य अद्भुत रीति से मुझ में पूरा होता है। मेरे मित्रों, मैं अपनी रेडियो सेवा के लिए परमेश्वर का स्तुति करता हूँ। मैंने उसकी खोज नहीं की, मैंने उसका प्रवर्तन नहीं किया, यह सेवा तो अपने आप ही बढ़ती गई। परमेश्वर ने इस सेवा को बहुत आशीषें दी है और मैं अति आनंदित हूँ। परमेश्वर अत्यधिक भला रहा है। मेरे प्रियो, मैं गिदोन की कहानी को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, परंतु उसमें एक और दुर्बलता थी। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 30 और 31 पद में। और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थी और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। मेरे प्रियो, गिदोन की अनेक पत्नियां थी और एक रखेल भी थी। उसके कुल 71 पुत्र थे। यह उसके जीवन का एक बड़ा कलंक है। अब कोई कहे, जैसा सुलेमान के लिए कहा जाता है, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को कैसे काम में ले सकता है और उसने उसे काम में ही क्यों लिया। गिदोन ने युद्ध के बाद बहुपत्नी विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किए थे, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने उसे काम में लिया। परमेश्वर उसके कामों से सहमत नहीं था। इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि उसके इन कामों के कारण इसराइल पर विपत्ति आई। अगले अध्याय में हम इसे स्पष्ट करेंगे। परमेश्वर ने अंतरजातीय विवाह मना किया था। उसने एक से अधिक पत्नी रखने की भी अनुमति नहीं दी थी। परमेश्वर ने आदम के लिए अनेक स्त्रियां नहीं बनाई थी, उसने केवल हवा को बनाया था। परमेश्वर ने आदम की सब पसलियां नहीं निकाली थी, उसने केवल एक ही पसली निकाली और हवा को बनाया। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि अब्राहम ने मिस्री दासी हाजिरा को अपने रखेल बनाया था, और आप विश्वास करें कि उससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। वह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसराइल की उत्पत्ति अब्राहम के पुत्र इसहाक से हुई थी। अब्राहम से उत्पन्न हाजिरा की संतान इश्माइल अरबों का मूल पिता था। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि एक अरब गाइड से बात करने के बाद उसे पता चला कि वह एक मुस्लिम व्यक्ति था। उसे गर्व था कि वह अब्राहम का वंशज है। उसने बड़े गर्व से कहा, मैं इश्माइल के द्वारा अब्राहम की संतान हूँ। मित्रों, यह सच है, वह अब्राहम का पाप था और परमेश्वर ने उसे आशीषें नहीं दी थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सुलेमान के इन कर्मों को भी आशीषित नहीं किया था और उसने इस काम में गिदोन को भी आशीष नहीं दी थी। और सच तो यह है कि गिदोन के इस काम के परिणाम स्वरूप इसराइल विभाजित हो गया था और उस पर विपत्ति आ गई। यह उसका कलंक है और परमेश्वर कोई बात नहीं छिपाता है। परमेश्वर मनुष्य का चित्रण स्पष्ट प्रकट करता है। यदि गिदोन का कोई मित्र उसकी जीवनी लिख रहा होता तो निश्चय ही उसके इस जीवन का उल्लेख नहीं करता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर मनुष्य के चरित्र चित्रण में उसके पापों और चरित्रहीनता के रंग को भी भर देता है। वह किसी भी बात को नहीं छिपाता है, वह उसे और भी अधिक स्पष्ट करता है। आइए अब हम देखें गिदोन के मृत्यु के बाद की अव्यवस्था। न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 33 से 35 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, गिदोन के मरते ही इसराइली फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया, और इसराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई। मेरे मित्रों, वही पुरानी कहानी यहाँ पर आती है। इतिहास का चक्र चलता रहता है जैसे आज चल रहा है। पहले वे परमेश्वर के भक्त जाति के थे और इसके बाद उन्होंने पाप किया, परमेश्वर को त्याग दिया और बाल की पूजा अर्थात बाल देवता की पूजा की, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें किसी न किसी के अधीन कर दिया। तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता खड़ा कर दिया। अब फिर गिदोन की मृत्यु के बाद वे बाल देवता की पूजा करने लगे। यह इसराइल की दुखद गाथा है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया की भी यही दुखद कहानी है। हर एक विश्वासी की यही कहानी है। आज हम में से अनेक जन इतिहास के इस चक्र को संसार में चला रहे हैं। एक दिन हम ऊपर उठते हैं, दूसरे दिन फिर नीचे गिर जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन से ऐसी अपेक्षा कभी नहीं की। वह चाहता है कि हम मसीह की संगति में प्रतिदिन बढ़ते जाएं और अपनी गवाहियों के द्वारा उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 9 में आते हैं और इस अध्याय का विषय है इसराइल का 5वां धर्म त्याग और अबीमेलेक का गृह युद्ध। हम देखते हैं कि गिदोन के पुत्र अबीमेलेक का कार्यकाल। इस अध्याय में गिदोन के पापी और दुष्ट पुत्र अबीमेलेक का इतिहास है। अबीमेलेक के लिए रखेल रखना उचित न हुआ, इसका परिणाम राष्ट्र में अव्यवस्था हुआ। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1-3 पद में, यरूबाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है। क्या यह कि यरूबाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, वा यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे। और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यह युवा अबीमेलेक अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसने सुना था कि इसराइल कभी गिदोन को राजा बनाना चाहता था। अब क्योंकि वह गिदोन का पुत्र था इसलिए वह राजा बनना चाहता था। अतः वह शकेम में अपनी माता के संबंधियों में जाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। तब हम पढ़ते हैं न्यायों 9 अध्याय के 5 पद में, तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूबाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। यह तो स्पष्ट ही है कि अबीमेलेक एक दुष्ट एवं निर्दयी मनुष्य था। उसने एक भयंकर कांड किया, उसने अपने ही भाइयों को मार दिया। कुछ बाइबल ज्ञाता उसे न्याय भी कहते हैं। अति संभव है, क्योंकि लिखा है कि उसने 3 वर्ष इसराइल पर शासन किया। डॉक्टर जेम्स एम ग्रे ने लिखा, अबीमेलेक का अनाधिकार शासन, भाइयों की हत्या सामान्यतः न्यायी नहीं मानी जाएगी। उसने गिदोन के 70 पुत्रों को मार दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। मित्रों, मेरे विचार में उसका विफल शासन दानियल की पुस्तक अध्याय 4 और पद 17 में प्रकट है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। आज भी जब कोई अच्छा शासक उभरता है तो अनेक जन कहते हैं परमेश्वर ही उसे लाया है, तो दुष्ट के बारे में क्या कहें। मेरे मित्र, परमेश्वर उसे भी गद्दी पर बैठने देता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात प्रजा को उनके योग्य राजा मिलता है। इसराइल चाहता था कि अबीमेलेक उन पर राज्य करे और उन्हें अपने जैसा ही राजा मिल गया। मेरे मित्रों, आज हम संसार को देखते हैं तो यही सिद्धांत प्रचलित पाते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर उसे उसके कुकर्मों का दंड देगा। परमेश्वर शकेम के निवासियों को भी दंड देता है, क्योंकि उन्होंने उसे राजा बनाया और अप्रत्यक्ष रूप से उसे पद भ्रष्ट किया। अब क्योंकि ऐसे अनेक मनुष्य थे जो उसे नहीं चाहते थे, अतः वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। आइए हम न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 52 से 57 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाई। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इसराइली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया, और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए, और यरूबाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। मेरे मित्रों, यह गिदोन के जीवन का दुखद अंत था कि इस अवैध संतान अबीमेलेक को जन्म देना। परमेश्वर ने गिदोन को बहुत ही छोटे स्तर से उठाकर इसराइल का मुक्तिदाता बनाया था, फिर उनका न्याय भी बनाया। यह कैसे दुख की बात है कि ऐसे भलाई करने वाले मनुष्य से ऐसा काम हो जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, और अंततः उसका परिणाम गृह युद्ध हो। इसी दुखद घटना के साथ इस अध्याय का अंत होता है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं 7वां न्याय तोला। न्यायियों के क्रम में तोला और यायर अगले न्यायी हैं। संभवतः आपने तोला के बारे में अधिक नहीं सुना है। यदि सुना ही नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं न्यायियों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद। अबीमेलेक के बाद इसराइल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इस्साकरी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एफ्रेम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। मेरे प्रियो, तोला की उपलब्धियां क्या थी? वह मर गया और उसे शामीर में मिट्टी दी गई। उसकी जीवनी में एक भी उपलब्धि नहीं लिखी गई है। यद्यपि वह 23 वर्ष इसराइल में न्यायी था, उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक एक भी शुभ कार्य उसने नहीं किया। यहाँ उसका कब्र पर बस यही लिखा है, जन्मा और मर गया। मेरे मित्रों, हम में से कई लोग इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन दिया है, लेकिन हम इस जीवन का उपयोग सही रूप से नहीं करते हैं। 23 वर्ष तक इस व्यक्ति ने क्या किया, कुछ भी इसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। यदि इसने कुछ भले कार्य किए होते तो निश्चय ही हमें इसे देखने को मिलते। आज हम में से कितने के जीवन इसी प्रकार के हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, उसने हमें ये जीवन दिया, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, और अंत में हमारे लिए भी यही कहा जाएगा, ये व्यक्ति जन्मा और मर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप कुछ न करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। मेरे मित्रों, आज ही आप अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको एक योग्य व्यक्ति बनाए, गिदोन के समान आपको आशीषमय व्यक्ति बनाए, बहुतों की आत्माओं को जो पाप में, बुराइयों में, गंदगियों में फंसे हुए हैं, उनको निकाले। क्या आप चाहते हैं कि वे भी प्रभु के राज्य में शामिल किए जाएं? यदि हाँ, तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें और परमेश्वर से उन लोगों के लिए और अपने जीवन के लिए भी आशीष मांगे, सहायता मांगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमें सिखाया है कि परमेश्वर आप कमजोर लोगों को उठाते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन हम आपको दे दें और हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोग भी आपको जान सकें। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को आप आशीष दें, प्रत्येक की सहायता करें, ताकि हर एक के जीवन से आपको महिमा मिल सके, उनके हर एक कमी घटियों से आप उन्हें आजादी दें। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यही मेरी ताकत।